भक्ति सिद्धांत सरसाद श्री गोपाल की जय। जय नित्य पुष्पमन महाभागवत पर गोविंद महाराज की जय। सज्जन भक्त ठाकुर की जय। समाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। श्रीमद भागवत मंत्राल की जय। जय गोविंद। नाम श्रेष्ठ मनुमपि सचिपुत्र मात्र स्वरूपं रूपं तेषाग्रजं मरुपरि मातृं गोष्ठवादिं राधा कुंड गिरिवर मोह राधिका माधवासं प्राप्त यस्य प्रसिद्धतां श्रीगुरुं प्रणत अस्मि वांछा कल्पतरु भविष्य कृपा सिन्धुरेव च पैतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विना अपराध बच्छे क्षिप्रादि कमादि तरंग मध्ये कृपा महितां शरणं प्रपन्ने वृंदे नमस्ते चरणारविंदां वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिब्ब च विसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सुख निवेदितास्तुद्रस्तभावीतृलाकृष्टसारस्तृपाजस्तम पुराण तमखिल विजिंग्रंग दशसूनुनत अस्मी भवी भविष्यथा भक्ति पादयति तथा कृषदेवेशनकासन प्रभु नाम संकीर्तनमेशर पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तु संग्रमामि हरि परम ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरां चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायमुदीरयेत् नाष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकि श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 4 श्लोक नंबर 37 तथा उपि देवा सकलात् न उपेक्षा इति मन्महे ततः तत्मूल खनने निजुंसा अस्मान् अनुव्रतान् तथापि देवा शाप तथापि देवा शापल्यान् उपेक्षा इति मन्महे तदत्तन्मूल खनने निजुक्षास्मान् अनुव्रतान् तथापि देवा साफल्यान् उपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूल खनने निजुक्षास्मानमनुव्रतान् तथापि देवसाफल्यान् न उपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूल खनने निजुक्षास्मान् अनुव्रतान्
हो गया सबका
तथापि देवान् फिर भी देवतागण
साफल्यात्
शत्रुता के कारण
ना
उपेक्षा
उपेक्षा
नहीं की जानी चाहिए। इति मन में है वह हमारा मत है। अतः इसलिए कान मूल खनने उन्हें समूल नष्ट करने के लिए नियुक्त कीजिए आसमान हमें अनुव्रतान आपका अनुगमन करने के लिए तत्पर रहना। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जाना चाहिए। अतएव उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार है। तात्पर्य नैतिक उपदेश के अनुसार अग्नि को पूरी तरह बुझाने में, रोग का पूरा पूरा निवारण करने तथा पूरा ऋण अदा करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा वह बढ़ते जाएंगे और बाद में इनका समन कर पाना कठिन होगा। इसलिए मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि वह अपने शत्रुओं का समूल विनाश कर दे। रूपा जी तात्पर्य में कितना सुंदर बताया। आग को पूरा तरह बुझा देना चाहिए, आधा अगर बुझा के जाएंगे दोबारा जलेगा, और रोग को पूरा तरह ठीक करना चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा आ जाएगा। तीसरा दिया ऋण कर्ज उधार, उधार को चुकता कर देना चाहिए, नहीं तो ब्याज बढ़ते जाएगा। इसमें अगर नहीं किया जाता तो क्या होगा बोलते हैं, बाद में इसको संभाल पाना बहुत भारी पड़ेगा। ये उपदेश सबके लिए है। अगर इस उपदेश का पालन नहीं किया जाता है तो भविष्यत में, जय श्री श्री गुरु गौरांग भंडारी जगन्नाथ, भविष्यत में तकलीफ होता है। भक्तों के लिए यहाँ पर शिक्षणीय विषय क्या है कि जो नैतिक उपदेश चाणक्य पंडित का नीति है, चाणक्य नीति जिसे कहते हैं ना, नदी नारी सिंगी धारी तीनों विश्वास को बिना करी। नदी को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कब पानी आएगा कोई नहीं जानता चाहिए। वहां ना उत्तराखंड में केदारनाथ, नारी को कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए अपना पोती को भी काट सकता है। और जिसमें सिंह है उसको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी गुंता मार सकता है, आपको प्राण ले सकता है। इसलिए कहते हैं नदी नारी सिंह की धारी तीनों विश्वास को बिना करी। ये सब जो वस्तु जो सब सामाजिक व नैतिक नीति निर्धारण किया गया है, इस नीति को भक्त लोग को भी आचरण के द्वारा अपना सुधारना आवश्यक होता है। क्योंकि भक्ति में पहले कहते हैं वाचो वेगो मनसो प्रधो वेगो उदर उपस्थ वेगान एतान वेगान जो विषय जो धीर सर्वांग सीमान पृथ्वी से शिष्या भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब तक छह वेद को दमन नहीं किया जाता है तब तक वैराग्य नहीं रहना चाहिए। ये छह वेद किसके लिए है? गृहस्थ के लिए। क्योंकि ब्रह्म तुहान वहां कहा अपना टीका में लिखे हैं तात्पर्य में ये ब्रह्मचार्य और सन्यासी पहले से छह वेद को दमन कर चुका है। उनका भाषा है हमारे नहीं। अगर नहीं किया है तो उनको ये वेश नहीं लेना चाहिए। तो ये सब जो भक्ति के लिए कहा गया है वाचो वेग, तो इसको अगर हम दमन नहीं करते हैं तो क्या होगा? झगड़ा होगा। जैसे किससे हुआ था? मंथरा द्रौपदी, मंथरा अपना बैठकों का कंट्रोल नहीं किया, अपना क्या बोलते उसको अभिषेक राज्य अभिषेक वनवास में बदल गया। थोड़ा सा बैठकों के लिए तो मंथरा झगड़ा किया था क्या? नहीं किया था। द्रौपदी अपना बच्चों को कंट्रोल नहीं रखा, क्या हुआ? कुरुक्षेत्र, नहीं तो कुरुक्षेत्र की युद्ध नहीं होता था। तो हम लोग सब भगवान का लीला है, दुनिया तो भगवान का लीला ही चल रहा है। सब व्यक्ति को अपना किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है सबको। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, कहे के हम भी कुछ भी उत्पादन कर पड़ेगा भगवान की इच्छा से हो रहा है। यही से आचरण का द्वारा शिक्षा दिया है। मंथरा का कंठ में देवता लोग सरस्वती को भेजा, जाओ सरस्वती तुम जाके मंथरा का कंठ में बैठो, नहीं तो रावण वध होने वाला नहीं है। अगर इसका डिटेल उसमें जाओगे तो ये मंथरा का क्या गलती है? षडयंत्र का शिकार ना। लेकिन यहाँ आचार्य लोग क्या बोलते हैं? बाइकों का कंट्रोल करना चाहिए। तो बाइकों को कंट्रोल करने के लिए सहज सरल उपाय क्या है? कृष्ण कीर्तन। कृष्ण कीर्तन यदि मतिना ही भेला, भगवान का नाम का अगर हम कीर्तन करेंगे तो हमारा बाइकों का वेद कंट्रोल हो जाएगा, आग पूरी तरह बुझ जाएगा। जिनका पास ज्यादा समय है बाइक को प्रयोग करने के लिए, उनके लिए आचार्य लोग क्या बोलते हैं? संख्या नाम बढ़ाओ। सोलोमाला करने का समय बचता है तो लक्ष्य नाम जप करो, समय कभी नहीं बचेगा। लेकिन इसके लिए आपको कौन लेना पड़ेगा संकल्प? हम रोजाना लक्ष्य नाम जप करेंगे तो आपको किसी के साथ वार्ता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपना मुंह में लगाम लग जाएगा। तो वैद्यको वेद को दमन करने के लिए एक ही रास्ता है, संख्या नाम व कृष्ण कीर्तन को वृद्धि करना। देखिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं, काम क्रोध साधो करे आर की बात करते पारे यदि है श्रीकृष्ण भजन। अगर भगवान का भजन हो रहा है तो काम क्रोध साधक को कुछ नहीं कर पाएगा। कोरिया गोविंद राव पलाइया जावे साहब सिंह रवे ज्ञान कोरिगण। उदाहरण कितना दिया देखो, अच्छा सिंह का साथ कुत्ता का उदाहरण नहीं दिया, दे सकते हैं ना? ये क्या बोला? सिंह और हाथी, कोरी शब्द का अर्थ हाथी। सिंह रवे जैन कोरिगण, कोरिया गोविंद राव पलाइया जावे सब। गोविंद नाम का उच्चारण अगर किया जाए तो तो सब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब भाग जाएगा। कैसे भाग, किस प्रकार भागेगा? जिस प्रकार अगर लायन दहाड़ता है तो हाथी भाग जाता है। तो हाथी भागने का मतलब क्या? बाकी सब चूहा बकड़ो जो है वो तो अपना भाग जाएगा। इसलिए हाथी को यहां लाया गया कि जंगल में सबसे बड़ा प्राणी हाथी है। आ कुत्ता बिल्ली किसको कौन पूछेगा? सिंह रवे जैना कोरी गांव लिखा है, तीर्थ भाम परिश्रम केवल मन भाम सर्व तीर्थ गोविंद चरण। एवं भक्त संजाम दिया और किशोर दास बाबी महाराज इस ग्रंथ को बोलते थे, किसी का अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो ढाई पैसा दे दो। ढाई पैसा कितना? ढाई पैसा किधर गया? भाग गया। अभी चालाना को कोई पूछता नहीं, ढाई पैसा में प्रेम मिलेगा। हम लोग कितना बड़ा बड़ा ग्रंथ लेके घूमते हैं। कृष्ण प्रेम चाहिए तो ढाई पैसा लो और प्रेम को पकड़ो। ब्रह्मांड में जितना सारे शास्त्र है वो ढाई पैसा के अंदर है। इतना ही होगा, आज पांच छह पेज होगा ज्यादा से ज्यादा, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। हमें किस प्रकार दमन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? जैसे अगर हम कुछ बीज जमीन में डाले तो उसमें से क्या आता है? पौधा निकलता है। अगर पिपल का ही पकड़ लो ना, इतना छोटा भी उसको डालोगे तो पिपल का पौधा निकलेगा। आज जैसे निकलेगा उससे उसको उखाड़ना चाहो तो कैसे है? क्यों उखड़ जाएगा? 10-15 साल बाद अगर उखाड़ना जाओगे तो आपका ताकत है? हाथी लगाओ इसे फिर भी नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए कहते हैं जो उसको एकदम बुझा देना चाहिए, ऋण को शुद्ध कर देना चाहिए और शत्रु को सत्यनाश कर देना। राजनीति नहीं लाने का, तो राजनीति भी है इसमें, पॉलिटिशियन है वो बोलेगा तो बोला आप राजनीति कर रहे क्या, तो पार्टी आके पकड़ लेगा। उन्होंने ऐसा ही काम किया जो आज तक राय दंगा नहीं होता है। सीधा मूल में विनाश कर दिया, सिर ऊंचा करने का समय नहीं दिया। इसलिए हमारा आचार्य लोग बा श्रीमद भागवत से हमें शिक्षा मिलता है। जैसे महाराज भरत का चरित्र को जानते हैं, उस चरित्र में क्या सीखा? भरत महाराज वहां लिखते हैं, भरत महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए स्वराज्य लोक की जो है सदा सर्वदा कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। राज्य लोक की भरत महाराज का शासन काल में सदा सर्वदा कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। लेकिन उसमें ऐसा वैराग्य आया जिस प्रकार लोग संदास जाता है तो वहां बैठ के रहता है, हुआ तो भाग गया। इस प्रकार संसार को ताक कर दिया। ताक करने के बाद जंगल में भगवत भजन किया, भगवत भजन में भाव का स्टेज में आया। भगवान का भजन करते करते भरत महाराज का आंख में आंसू आते थे। कर्म होय बड़ो बलवान, नदी में पानी लाने जा रहा है, हरिन पानी पी रहा है, गर्भवती है, सिंह ने दहाड़ मारा, हरिन ने कुदी मारा, बच्चा निकल गया, हरिन उधर जाके मर गया, हरिनी ने बच्चा स्रोत में बह रहे हैं। भरत महाराज का दया आ गया, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन यहा वही आर किचू नहीं सनातन। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ये सनातन इससे बड़ा कोई वस्तु नहीं है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? जे जीवे सेवा करे जे जन से जन सेवी जे ईश्वर, हे मायावादी है। जीव सेवा ईश्वर सेवा, वैष्णव भी कहते हैं जीव में दया करो। कल भक्ति एक लेक्चर पढ़े उसमें कहते हैं, बहुत सुंदर को उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पण भाव नहीं है उसको भागवत मत सुनाओ। समर्पितात्मा के लिए भागवत है, जो समर्पितात्मा नहीं है उसको भागवत सुनाने का नहीं। फिर क्या लिखता है, फिर भी हम लोग को जीव में दया करने के लिए भागवत श्रवण कराना पड़ेगा। देखो दोनों जगह भाषा अलग है, उल्टा मत समझ लो। बोलते जो समर्पित है उसको ठीक है, उसको ही सुना। अगर जो समर्पित आत्मा नहीं फिर भी उनको सुना, दूसरा लाइन में कहते हैं अश्रद्ध दान है विमुख को सुनती जस्त उपदेश हरिनाम अपराध। अश्रद्धालु वा विमुख व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। भागवत भी हरिनाम ही है, दूसरा कोई वस्तु नहीं, उसको भी नहीं देना चाहिए। और वैष्णव विचार में कहते हैं ईश्वरे तदग्नेषु बालिशेषु दिशेषु च प्रेममति कृपा उपेक्षा जत करोति समुद्यम। वैष्णव विचार, अगर देशी व्यक्ति को उपेक्षा नहीं करोगे तो मध्यम अधिकारी बन नहीं पाओगे। बोलेगा हम देशी को उपेक्षा करते जाएंगे मध्यम अधिकारी बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि जो मध्यम अधिकारी बनते हैं उसके गुणावली है। ईश्वर में प्रेम करेगा तब अधीनेशु, मतलब क्या है, जो ईश्वर का अधीन है कौन हो गया भक्त, उससे प्रेम करेगा। और बालिशेषु, बालिश मतलब जो अतत्विज्ञ व्यक्ति है, जिसका दुष्ट बुद्धि नहीं, जिसका दुष्ट बुद्धि है वो देशी हो गया, तो जिसका दुष्ट बुद्धि नहीं उसको पर कृपा करेगा। आज देशी व्यक्ति का उपेक्षा करेगा, मध्यम अधिकारी है। अगर इसको फॉलो नहीं करता तो मध्यम अधिकारी नहीं बन सकता है। अरे वो सहजात गुण है, अगर बोले कि हम भी काल से ये चार रूल को फॉलो करेंगे तो हम भी मध्यम अधिकारी बन जाएंगे, असंभव है। क्योंकि बिल्ली अगर बोलेगा दूध का कड़ाई का समय बैठ के रहेगा हम दूध नहीं पिएगा, संभव बिल्ली के लिए नहीं है। दो चार रुपये का थोड़ा पी लू वो पी लेगा। उसी प्रकार कोई भी वस्तु साहजिक धर्म जो है और बनावटी धर्म है, बनावटी करके हम लोगों से क्या ले सकते हैं, बहावा ले सकते हैं जो खांसता ही है। लेकिन साहजिक वस्तु उससे सहज भाव में प्राप्त होता है, जैसे सतमा और नियोमा। अपना मामी बच्चा को, अपना बच्चा कोई मारेगा नहीं, जो सतमा होगा उसका विचार ये रहेगा। जो साहजिक जो प्रेम धर्म है, उस साहजिक प्रेम धर्म के द्वारा जो सहज वस्तु सहज भाव में प्राप्त होता है वो तो बनावटी धर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देशी व्यक्ति को उपेक्षा। अभी भरत महाराज क्या करेगा, अगर आप भी होते तो आप क्या करते थे, आप भी उठा कर रखते थे। तो भरत महाराज ने उठा के रखा, फिर सोचा इसको अगर छोड़ दूं कोई आके खा के चला जाएगा, मुसीबत, रोज साथ में ले जाए। अभी साथ में ले जाके धीरे धीरे क्या होगा, उसमें प्रेम हो गया। जिस प्रेम भगवान में था वो प्रेम उससे हाथ करके हरिण शिशु में प्रेम हो गया। लास्ट में आप लोग को सबको मालूम है क्या हुआ, भरत महाराज को हरिण बनना पड़ा। क्या वास्तव में भरत महाराज के ज्ञान नहीं था, जो व्यक्ति हरिण शिशु में क्या मिलने वाला है, उनका इतना सुंदर पत्नी था जिससे बहुत कुछ मिलते हैं, भौतिक जगत में भौतिक सुख सुविधा, इतना अच्छा उनका राज था जिसको विष्टावत ताप करके हरिभजन करने के लिए आ गया, आके हरिण शिशु में फांस गया। इसलिए कहा पिप्पल का पौधा अगर जिस दिन बिया डालोगे झाड़ निकलने, उसको निकलने में आसान है, जस तलवा हाथी लगाओगे तो नहीं निकल पाओगे। संसार साफ करने के बाद वैराग्य को जीवन यापन करने के लिए जब हम अंदर आए हैं, किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ है नहीं हम दूसरे से दुश्मनी करें। यथा लाभ संतोष, जितना जरूरी रखना, अगर ज्यादा घीटा पीटा होगा ना तो क्या होगा, वही एक व्यक्ति एक दिन हमको खा जाएगा, हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये प्रहलाद महाराज का सिक्का का सिक्कोनीय विषय है। उन्होंने अपना आचरण के द्वारा दिखाया, देखो मेरा ये हाल है। ये हाल इसलिए कहते हैं ना, शत्रु को पूरा समाप्त कर देना चाहिए, उसको बढ़ने का रास्ता नहीं देना चाहिए, आग को पूरा बुझा देना चाहिए, ऋण को पूरा समाप्त करना चाहिए। यदि वहां जंगल में जाकर जी हरि भजन करने के लिए हम इधर आए हैं, हमको हरि भजन का जाएगा, हरि का भोजन हो जाएगा, रूप सनातन वृंदावन में भजन कर रहे हैं, एक महावन में है और एक राधा कुंड में है, सनातन गोस्वाम की इच्छा रूप गोस्वाम को दर्शन करने के लिए जाऊं, थोड़ा देख के आऊं, वहां से आए आकर के, और रूप गोस्वाम की भी इच्छा था ये सनातन गोस्वाम के दिन परमान्न भोजन कराएंगे। ठीक, तूने इसका दोनों की इच्छा था, उन्होंने आया आकर के सनातन गोस्वाम रूप गोस्वाम दोनों मिलाप हुआ, इष्ट गोष्ठी हो रहा है। अभी दूध किधर है, गुड़ किधर है, राइस किधर है, किधर कोई ठिकाना नहीं है। इतने अवसर में एक ब्रज बालिका आया और आकर के बोला, बाबा ये दूध रहा, ये राइस रहा, ये गुड़ रहा, भगवान को भोग लगा के पा लेना, दोनों का हरी कथा चल रहा है। बोला आप लोग सुनते रहे नहीं, धरते रहे, चलो मैं ही बना देता हूँ। कोई जाकर गोबर ला करके जला करके खीर बना दिया, बोला बाबा खीर बन गया, भोग ला करके पा लेना। अभी रूप गोस्वामी बाद खीर को भगवान को भोग लगा करके और सनातन गोस्वामी को दिया। वहां एक विचार हो रहा था, चाटु पुष्पांजलि क्या साधारणी का स्तव है, बेलाल खनाज बेंगा लुलोलो करके पहला लाइन इसका श्लोक का है, वही विचार चल रहे थे। उस विचार में कहते हैं राधा रानी का बेनी जो है वो सर्प सदृश है, लिखने वाला रूप गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी विचार कर रहा है कि राधा रानी का जो बेनी, सांप का सब तुलना दिया, सांप क्या है, फल है, दुष्ट बुद्धि है, जिसको दंशन करेगा वो ऊपर चला जाएगा, उसका तोड़ी पार हो जाएगा। पर रूप राधा रानी कैसे है, अपना नाम का आभास से कृपा करता है, रा अगर करेगा तो धा बोल के दौड़ के आता है राधा रानी, पर वो मेरा नाम उच्चारण कर हमको जाना ही पड़ेगा। कृष्ण भी रा शब्द सुनने के लिए ललायत तो रहते हैं, जो कोई रा तो बोले कम से कम। ये राधा, ये रा शब्द इतना महत्वपूर्ण है, बट उस राधा रानी का बेनी का पुराना खर्च के साथ कैसे रूप गोस्वामी दे दिया, विचार कर रहे हैं। यही दोनों भाई से विचार कर रहे हैं, दोनों भाई भी और गुरु शिष्य भी, जो समझो इस प्रकार विचार चलते थे। और प्रसाद पाया, प्रसाद पाने का बोलता है, पर एक खीर कोई सामान्य वस्तु नहीं है, ये जरूर राधा रानी ला के दिया होगा। तब सनातन गोस्वामी कहते रूप ये कैसे हो गया, बोले मैंने इच्छा दिया था आपको खीर भोजन कराने के लिए। बोला देखो हम लोग ब्रज में किस लिए आया है, राधा रानी का सेवा करने के लिए आया है कि राधा रानी से सेवा लेने के लिए आया है, हम लोग का कर्तव्य राधारानी का सेवा करना, कि राधारानी का सेवा, राधारानी खुद हमारा सेवा करे। आज का बाद ऐसा इच्छा मत करना। वैराग जुग भक्ति रस प्रजेति मामन मिप्सु बंधम कृपा बुधिर जो पर दुख दुखी सनातन तम रोमात्रयामी। जो वैराग्य युक्त, जो वैराग्य लोगों को शिक्षा देते सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपना राधा को भजन कर रहे हैं, तीव्र भजन कर रहे हैं। वैशाख महीना का कड़क धूप है, वृंदावन गया कभी गर्मी के टाइम में देखो कितना धूप है, उस धूप में है दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं। राधारानी अपना उड़ना लेके खड़ा है, सनातन गोस्वामी दूर से दर्शन कर रहा है, दास गोस्वामी को मालूम नहीं। आके कहते हैं रघुनाथ आज का बाद कुटीर का अंदर बैठ के भजन करना, बाहर मत निकलना। क्यों मना किया? जो बाहर अगर निकलोगे तुम्हारा दुख देख के राधारानी दुखी हो जाएगा और राधारानी तुम्हारा सेवा करेगा जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। ये हरि भजन और हरि भोजन, हम लोग हरि को भोजन करने के लिए नहीं आया, हम लोग हरि को भजन करने के लिए आया। अगर हम लोग हरि सेवा का छलना करके विषय भोग में लिप्त हो गया तो हम लोग कहां कर आ गया। इसलिए सड़क गोस्वामी बाद जो गोस्वामी लोग ब्रज में आकर के क्या खाते थे, कोई दिन भर में एक अंजोली माथा, किसी ने आटा का लाड्डू जला करके दो चार फीक लिया, कोई ने सूखा चना करके पानी पी लिया, किसी ने डुबकी मार के जमुन का किचड़ खा कर आ गया। ये सब भजन, छप्पन भोग खा करके हरि भोजन करना आसान नहीं। तो उसमें क्या होगा, विश्वास स्पृहा बढ़ेगा। बोला प्रसाद सेवन करीते हय सकल प्रपंच जय, बोले है कि नहीं। तो प्रसाद बुद्धि है किसमें, थोड़ा सा प्रसाद नारद का नाखून का कोना में लगा हुआ था, वो शिवजी खा करके कोयला को हिला दिया प्रसाद। हम इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, गिलास भर भर के स्वीट खाते हैं, फिर वह मंदिर को हिला नहीं पाया। तो मतलब हमारे प्रसाद में प्रसाद बुद्धि है नहीं। जिहार लालो से जे इति धाय कृष्ण दौर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो ले लेंगे, वो छोड़ देंगे, कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकता है। सर्विस करने वाले जो प्रसाद सेवा करते हैं वो जो दिया भोजनकारी व्यक्ति को उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो मुझे दे दो ना थोड़ा, नहीं, उन्होंने जो दिया। आज हम सेवा कर रहे हैं, आज आपको हम कम दिया, कल जब आप सेवा करो तो मुझे आप कम देना, ये हो गया क्या है? आप क्या था? मुझे इतना ही दिया था, आज में मेरा पांचा है ना, मैं आपको आपको इतना ही दूंगा। तो दुष्ट बुद्धि, साधु नाम समचित्ता नाम, साधु लोग समचित्त होता है और वो सम में समदर्शी होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से सबको ही दर्शन किया जा सकता है, सब कुछ, लेकिन जो अंधा होगा वो सब कुछ देख सकता है क्या? उसके लिए सब दर्शन नहीं है। उसी प्रकार साधु सब में समदृष्टि होता है, लेकिन अपराधी व्यक्ति के ऊपर साधु का कृपा नहीं होता है। इसलिए देवता लोग नारद का साथ इतना संग करने के बावजूद भी भक्त तो नहीं बन पाए। और वही वैद्य नारद दो चार शब्द बोला, वैद्य ने सब कुछ छोड़ के संसार त्याग करके हरि भजन में लग गया, शुद्ध भक्त तो बन गया। दो शब्द बोला था, तुम्हारा पाप का भाग्य कौन बन होगा? वो क्या बोला, हम सब कुछ छोड़ देंगे, क्या खाएंगे, हमारा जिम्मेदारी है। बस अपना बड़ा संसार को त्याग करके हरि भजन में लाग दिया। इसलिए अगर हमें इस सब से जय प्राप्त करना है, हमारे लिए अग्नि क्या है? भौतिक इच्छा। अग्नि को पूरा बुझा देना चाहिए। हमारे लिए भौतिक इच्छा अग्नि स्वरूप है, इसे समूल नाश करना चाहिए। निरपेक्ष नहीं रे धर्म और ना जाए। जब तक आप निरपेक्ष नहीं बनोगे तब तक भक्ति धर्म का रक्षा नहीं किया जा सकता है। जब तक फेस देखते रहोगे तो फेस देखते रहे इसको इस अवधान कैसे बोलूं। लेकिन हमें भक्ति के लिए हमें बोलना पड़ेगा, कठोर से कठोर शब्द बोलना पड़ता है। भालो ही बाहर का लोग दुखी क्यों ना हो जाए, उसके सुख के लिए हम अपना भजन नष्ट नहीं कर सकते हैं। गौर किशोर दास बाबू जी महाराज नवद्वीप में भजन कर रहे हैं, एक धनी व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपको रोज खिलाऊंगा, आप हमारा तरफ से भिक्षा लिया कीजिए। दूसरा किधर भिक्षा नहीं लेने का, बोला मुझे आप बैर समझ के रखा क्या? हम बोलेंगे अगर कोई अगर बोलेगा प्रभु जी आप टेंशन मत करो, आपका साल भर का कपड़ा जो भी धोती लगता है, जहां भी आप जाओगे, जो भी मोबाइल का चार्ज हो गए, मोबाइल वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, आप किसी मंदिर से मांगने की जरूरत मैं आपको दूंगा, हम खुश हो जाएंगे। हम बोलेंगे आप हमको बैर समझ, बोल पाएंगे क्या? हम तो खुश हो जाएंगे, क्या मिल गया, हमारे सब कुछ मिल गया। लेकिन गौर किशोर दास ने क्या बोला, आप मुझे बैल समझ के रखा गया, मैं आपका बैल हूं। जब फिरा के आपको बड़ा करके रखोगे, जब मुझे आपको मुझे जुटते रहोगे, मैं आपका बैल नहीं हूं, मैं सार हूं। सार सार क्या होता है? जिधर मुर्गी अपना मुर्गी चढ़ के खाता है, कोई कुछ बोलना, जो डरना हमारा ठीक भी सही है वो तो अपना खा खा के चला जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब बैल बनने की डर नहीं है, हमें सार हूं। और सेठ को बोल दिया उन्होंने, एक सेठ ने कहा बाबा आप यहाँ भोजन करते आपको बहुत सारी तकलीफ है, मैं आप हमारे घर में आके भोजन करो ना। बोला देखो मैं अगर आपका घर में जाऊं तो क्या होगा, आपका कितना असबाब है, कितना बड़ा घर है, कितना कुर्सी वगैरह है, सब कुछ लगा हुआ है, फिर आपका बच्चा काच्चा बहुत सारे हैं, और उसमें से किसी के साथ हमारा प्रीति हो गया तो फिर आप मुझे लात मारोगे। इससे अच्छा आप वो सब छोड़ के एक मैं इधर बोलते हो ना, आप मेरा मालू बोल के भजन करो, दोनों दोस्त बन जाएंगे, आपका भी कुछ नहीं मेरा भी कुछ नहीं, शत्रु का नहीं होगा। और आपका वो सब देख करके मैं आपसे हिंसा करूंगा, जैसे किधर हुआ था विराटराज और आचार्य द्रोण, द्रोणाचार्य आके क्या बोला, एक गाय दे दो, झगड़ा हो गया ना, कुरुक्षेत्र हो गया, वास्तविक आप लोग सब जानते हो। इसलिए कभी कोई भी वस्तु क्यों ना हो उसको उखाड़ना है तो शुरुआती दौर में, लेट नहीं करने का, शुरुआती दौर में उसको उखाड़ के फेंक दो, न आप दुखी होगा न वो व्यक्ति दुखी होगा। क्या कहते हैं, ये लोग तो अच्छा दिया, असुर लोग भी, असुर लोग का भले ही लोग फॉलो नहीं करते, बुद्धि कितना अच्छा है कि शत्रु को मार देना चाहिए। देवता लोग यद्यपि आपका भय से छिप गया फिर भी बोलना मुश्किल है कब आ जाएगा। इसलिए हम लोग का राय अगर आपको सुनना है तो आप उस देवता को समूल में नष्ट कर दो, जो कभी सिर ऊंचा करने का सवाल ही नहीं आता है। और आप आज्ञा करो, हम लोग उसको आपका अनुव्रत है, हम फॉलो करने तैयार है। रूपा जी उसका जगह तीन उदाहरण दे दिया, आपको बुझा देना चाहिए, ऋण को शोध करना चाहिए और रोग को पूरा से पूरा नाश कर देना चाहिए। इसलिए हम जब हरि भजन करने आए हैं तो हमारे क्या करते, किसी प्रीति किसका साथ, प्रीति भगवान में, प्रीति भक्त में, प्रीति अतत्व व्यक्ति में। कितना प्रीति है, विवेकानंद जैसे जीवदया नहीं करने का, ना ही भरत महाराज जैसे जीव दया करने का, जीव में दया अर्चना करने का, हरि कथा सुनाओ और अपना जो चाकाई लेके बैठो चाकाई को गोगल में दाबो और भागो, रुकने का नहीं। अगर बोलेगा पूरा हमारे घर में भजन कर भोजन करके जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। गया हरि भजन किया, चलो अपना। एक बार भक्ति प्रज्ञान कैसे महाराज का टाइम हो गया, भक्ति प्रज्ञान कैसे महाराज का शिष्य हो, उन्होंने अपना गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे शादी करने का है, ब्रह्मचर्य है, लेकिन मुझे शादी करने की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे शादी करने का मन कर रहा है, आप इच्छा को उद्धार कर सकते हो? मैं ठीक है कर देंगे। दूसरा सबक को बोला बोला इसको घर में लेके जाओ, घर में लेके गया, लॉक मार, घर में लाख कर लॉक मार दिया, तीन दिन तक खुला नहीं, तीन दिन खुलने के बाद थोड़ा पानी दिया, पानी आने दिया, इसको भोजन कम करा दो, फिर महीना भर गया, अभी शादी करने का है, ये ना बाचो बेगो क्रोधो जिहा उधर उपस्थ, एक लाइन में उधर बेग का वाली उपस्थ बेग है, उधर में अगर अच्छा अच्छा खाना जाए तो उपस्थ बेग अपना वृद्धि होगा, उधर वेग का कंट्रोल करने के लिए कृष्ण प्रसाद, और कृष्ण प्रसाद का प्रसाद बुद्ध में अगर खाया जाए तो उधर वेग भी नहीं होगा उपस्थ वेग भी नहीं होगा। इसे शत्रु को अगर मारना है तो समूल में नाश करो, नहीं तो एक दिन वृद्धि होके हरिण बनना पड़ेगा, और हम तीन लोग का संग करेगा, हमें क्या बनना पड़ेगा, इनका लड़का बनना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि इनका घर में हमें जन्म लेना पड़ेगा। ये सबसे अपना ही रखना चाहिए जितना हरि भजन के लिए आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो क्या होगा, हमारा भी सत्यानाश हो जाएगा। हरे कृष्ण। Yeah.